शिव पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें श्री मत दे रहे हैं, चाहे साकार रूप में दी चाहे अव्यक्त रूप में अभी भी दे रहे हैं। और इसके पीछे क्या लक्ष्य है कि हम सभी आत्माएं पावन बन, बाप समान बन, बाबा के साथ वापस घर जाएं और फिर नई दुनिया में राज्य करने के लिए आए, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए ही सारी श्रीमत है सद्गुरु की, चाहे बाप के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे सद्गुरु के रूप में। हमें शिक्षाएं प्राप्त होती रहती है, अचानक और एवर रेडी का पाठ, हम सदा ध्यान पर रखें। और इसमें तीसरा शब्द भी बाबा ने जोड़ा है, बहुत काल का अभ्यास जो हमें अचानक और एवर रेडी बनने में मदद करेगा, पर उसके लिए विशेष रूप से हमें यह ध्यान देना होगा कि हमको कहने वाला कौन है, ये सब श्रीमत देने वाला कौन है। कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, कोई गुरु गुसाई नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है, कोई धर्म आत्मा नहीं है, लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा है। आज भी जब बाबा की मुरली सुन रहे थे तो आज का गीत याद है आप लोगों को, कौन सा गीत था, कौन सा गीत था आज का, हाँ कौन सा गीत था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे झोली। भगवान हमारे द्वार पर आकर हमें कह रहा है कि हे बच्चे अपनी झोली भर दो, ज्ञान रत्नों से झोली भर दो। हमारी झोली खाली थी, भक्त रूप में हमारी झोली खाली थी ना, भगवान को हम कहते ही थे भगवान हमारी झोली भरो, हमारी झोली भरो। शिव के लिए कहते ना, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। तो वो शिव भगवान स्वयं आकर के कहता है अब अपनी झोली भर दो, और जब आप अपनी झोली भर देंगे तो काल कंटक तो दूर हो ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ दो युगों तक माला माल हो जाएंगे। ये ज्ञान रत्न गुण और शक्तियां जो बाबा हमें खजानों के रूप में दे रहे हैं, वो हम जितना भरते जाएंगे उसका स्वरूप बनते जाएंगे, उतना ही हम भविष्य में सच्चे हीरो के, सच्चे रत्नों के रूप में इन्हें प्राप्त करेंगे। इसलिए अभी आवश्यकता है कि हम पहले ये समझें कि हमें ये कहने वाला कौन है। कई बार क्यों प्रश्न उठते हैं, क्यों आश्चर्य होता है, क्यों कौमा लगता है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये कहने वाला कौन है। हमारे सामने गीता का उदाहरण है, भगवान अब डायरेक्ट हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं, डायरेक्ट हमारे आगे लक्ष्य बता रहे हैं, लेकिन हम क्यों माया के वश हो जाते हैं, क्योंकि ये निश्चय कम हो जाता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। अगर हम वो लौकिक गीता भी उठाएं, अर्जुन भी प्रश्न तब करता रहा जब ये भूल गया कि हमको ये कहने वाला कौन है। वो यही समझता था कि ये तो साधारण स्वरूप हमारे सामने है, कृष्ण को सखा देखता था, ये मेरा सखा बचपन का मित्र ये मुझे कह रहा है, इसलिए मैं मानू न मानू कैसे मानू। एक और वो मोह के वश था, इसलिए जब भगवान ने उनसे कहा कि अब इनको मारो, तो कहा कैसे मारूं, ये मेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई सारे रिश्ते नाते तो सब उस कौरवों के पक्ष में ही थे, इतने सारे रिश्तेदार एनिमी पक्ष के में थे और भगवान उनको कह रहा है कि इनको मारो, तो वो मोह के वश अर्जुन ये समझ ही नहीं पा रहा था मैं कैसे मारूं। तो श्रीमत भगवत गीता अर्थात भगवान की श्रीमत जो अर्जुन को मिली कि इनको मारो, पर अर्जुन बार बार प्रश्न करे कैसे मारूं। तो जो कुछ भी अर्जुन के मन में प्रश्न थे, आश्चर्य था, दुविधा थी, वो इसलिए थी कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मुझे कहने वाला कौन है। पर जिस समय उसको ये समझ आ गई कि ये मुझे कहने वाला कौन है, तब तैयार हुआ वो युद्ध करने लिए। भगवान ने भी अनेक युक्तियां रची अर्जुन को समझाने के लिए। तो सबसे पहला पाठ भगवान ने उनको यही कहा और हमको भी यही कह रहे हैं बाबा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये पहली श्रीमत है। दूसरों को भी आत्मा देखो। तो जब अर्जुन को भगवान ने कहा हे अर्जुन इन सब को मारो, तो कहा मैं कैसे मारूं, तो कहा कि मारो अर्थात इनको आत्मा देखो, देह मत देखो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये शरीर तो केवल एक चोले के समान है, जो चोला हम धारण करते हैं तो जन्म कहा जाता है, चोला छोड़ते हैं तो मृत्यु कही जाती है, ये तो चोला पहनना चोला उतारना वैसे देखा जाए रोज का काम है, नहीं एक चोला पहनते हैं पहले उतारते हैं फिर दूसरा पहनते हैं, सवेरे स्नान करने जाते हैं ताजा चोला लेकर के जाते हैं, स्नान करने से पहले पुराना मैला चोला उतारते हैं, स्नान करके नया चोला पहनते हैं, इसमें दुख की क्या बात है। तो जो भी देह छोड़ते हैं तो नई देह तो उनको मिलनी ही है, इसलिए इसमें दुख करने की बात ही नहीं है। कितना सहज करके भगवान ने दिया। तो ये पहली श्रीमत है कि अपने को भी आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा देखो। कल भी बाबा की मुरली जो संडे की मुरली थी तीन बिंदी की बात, उसमें तीन बिंदी में पहली दो बिंदी कहा क्या कहा, खुद भी आत्मा समझो आत्मा देखो और दूसरे को भी आत्मा देखो। ये पहली श्रीमत है। ब्रह्मा बाबा ने इस श्रीमत का एक सेकंड में पालन किया। कैसे पालन किया, जैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और उसको ये ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। बाबा की हिस्ट्री में आप सुनते होंगे ना, इतना नशा चढ़ गया बाबा को जो बाबा दीवारों पर लिखने गए लिखता रहा मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी आत्मा समझे दृष्टि रखे तो दीवारों पर लिखता रहा यशोदा बाबा की लौकिक युगल थी, तो बाबा लिखता रहा दीवारों पर यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। ये पुरुषार्थ के अंदर ही अंदर बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, बस लिखता गया दीवारों पर। लोग समझते थे क्या हो गया इनको, बाबा को आत्मा है आत्मा है, रट लगाए बैठा है। लेकिन ये पहली श्रीमद् भगवान की उनको मिली। तो पहला अर्जुन कौन, जो ओटे सो अर्जुन, तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा अर्जुन बने। वैसे तो गीता शास्त्र में बताया कि अर्जुन को तो प्रश्न उठे कैसे क्यों, तो भगवान शिक्षा देता रहा। आत्मा का पाठ सबसे पहले पढ़ाया भगवान ने, लेकिन फिर देखा कि आत्मा का पाठ नहीं पढ़ रहा है कि चलो आत्मा देखो ये तो अजर अमर अविनाशी है, ये तो चोला छोड़ना है, लेकिन मैं क्यों निमित्त बनूं इनको मारने के लिए, क्योंकि सारा भाव ही बदल गया, युद्ध का स्थान दिखा दिया है, जबकि है ये कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, जो हमारा जीवन है ये संसार है, उसको भूल करके छोटा सा कुरुक्षेत्र का मैदान दिखा दिया। तब दिखाया कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठे, मैं क्यों मारूं, अपने आप ये देह छोड़े और बात है, पर मैं क्यों निमित्त बनूं। लेकिन फिर देखा भगवान ने कि अर्जुन समझ नहीं रहा है और नहीं उस श्रीमद का पालन कर रहा है, तो फिर भगवान ने दूसरी युक्ति रची। और वो युक्ति क्या थी कि हे अर्जुन, तुमको पता है तुम कौन हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें कायर कहा जाएगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य ही है युद्ध करना। धर्त प्रिय धर्म छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, जो तुमने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा का तुम्हें पालन करना है, अगर तुम नहीं करेंगे तो आपके जो भविष्य में आने वाली आपकी वंशावली कहेगी कि हमारे पूर्वज तो कायर थे, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम योद्धा हो। तो भगवान भी हमें, हमारे सामने कौन कौन दुश्मन है वो बाबा बताते हैं, ये माया तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इस माया ने ही तुमको गिराया है, इस माया पर ही तुम्हें विजय पानी है। रोज बाबा बच्चों को उसके लिए स्वमान देते हैं, क्योंकि ये मैं का दरवाजा ही पहला दरवाजा है विकारों के लिए, या पाप बना पाप करने के लिए, या नरक का द्वार अगर पहला है तो ये मैंपन। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं कहने की आदत है, क्योंकि सुबह से लेकर के मैं ऐसा। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि हाँ सैक्रिफाइस करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो मैं की बलि तो नहीं चढ़ा सके, तो जो निर्दोष जानवर है ना मैं करने वाला बकरा, उसकी बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि अहम की बलि नहीं चढ़ा सके। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना एक बहुत बड़ा निश्चय है, माया पर जीत पाने के लिए ये बहुत बड़ा निश्चय है। फिर बाबा कहते अच्छा मैं चलो नहीं भूल सकते हो तो याद करो कौन मैं, तो फिर मैं आत्मा, फिर याद करो मैं कैसी आत्मा, तो फिर आज भी बाबा ने मुरली में कहा अपने स्वमान को याद करो, आत्मा तो हूँ पर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ केवल कहने से इतना नशा नहीं चढ़ता है, फिर मैं कैसी आत्मा हूँ, तो भगवान ने कितने हमें कितने स्वमान दिए हैं हमें, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ये तो आत्मा के सात गुण सदा याद रखो, ये तो स्वमान है ही। फिर इसके बाद के जो स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर ज्ञान सागर हूँ, भगवान के टाइटल भी भगवान हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा कहते मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ बच्चों को दे रहा हूँ, खुद खाली हो जाता हूँ, ज्ञान को खाली कर देता हूँ अपने अंदर से, बच्चों को भर देता हूँ। तो इतना भगवान हमको हमारे स्वमान में हमको टिकाते हैं, ताकि हमें वो नशा चढ़े कि हम कौन है, जिसके आधार से हम माया पर जीत पा सकते हैं। तो जब अर्जुन को कहा तुम क्षत्रिय हो, मानो कि ये स्वमान उसको दिलाया तुम कौन हो, तुम कैसी आत्मा हो, पहचानो अपने आप को। लेकिन फिर देखा अर्जुन फिर भी चाहे क्षत्रिय हूँ तो क्या, स्वमान भी भूल गया और कहा कि चलो कुछ भी हो जाए मैं नहीं मारूंगा, कोई बात नहीं, मैं कैसे निमित्त बनू मारने के लिए। सारी बात का कारण था वो मोह के वश था। तो हम सब आत्माएं भी जब मोह के वश हो जाती है तो बाबा की बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, बाबा आप कहते तो है ये कैसे होगा, हाँ कैसे होगा बाबा। फिर बाबा कहते, आज भी बाबा ने कहा देश है दे के सब धर्मों को छोड़ो, देश है दे के सब संबंधों को भूलो। बच्चे कहते बाबा कैसे भूले, हाँ मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मेरा फलाना, मेरा फलाना, कैसे भूले। तो बाबा कहते अपने स्वमान को याद करो, मेरे साथ से सर्व संबंध जोड़ो, तुम कौन हो, तुमको कौन मिला है, अगर वो तुम याद करेंगे, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे, जो भी संबंध आप चाहते हो, माँ का संबंध, पिता का संबंध, भाई का संबंध, बंधु का संबंध, सखा का संबंध, पतियों के पति का संबंध, कोई भी संबंध आप सब जोड़ना चाहते हो वो मेरे साथ जोड़ो, मैं बहुरूपी बन जाऊंगा, आपके साथ सर्व संबंध निभाऊंगा, बच्चा भी बन जाऊंगा। आजकल के बच्चे भी कहाँ तक माँ बाप की पालना करेंगे, कहाँ तक कुल्हे पर चढ़ाएंगे, अंत में तो कुल्हा देना होता है। पता नहीं बाप मर गया, बेटा अमेरिका में बैठा है, कहता मैं नहीं आ सकता, हाँ बाप मर गया तो भी नहीं आ सकता अमेरिका से, कहाँ कंधे पर चढ़ाया चढ़ा सकते हैं, कहाँ अग्नि संस्कार कर सकेंगे, आ ही नहीं सकता है। तो वो जो पिता का ऋण है वो भी पूरा नहीं कर पाएगा, पिता प्रति जो ऋण है। लेकिन भगवान कहता है मैं तुम्हारी सब आशाओं को पूर्ण करूंगा, तुम्हारा बच्चा भी बन जाऊंगा, तुम करके तो देखो, सब संबंध मेरे से जोड़ के तो देखो। लेकिन हम डरते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, इसलिए श्रीमद का पालन करना मुश्किल लगता है। परंतु जैसे बाबा कहते धत पड़िए धर्म छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये भगवान की हम बच्चों को श्रीमत है। बच्चे बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, पवित्रता का धर्म है, कुछ भी हो जाए मरना पड़े उसके लिए, लेकिन मैं पवित्रता का धर्म पालन जरूर करूंगा करूंगी, कुछ भी करना पड़े, सारा संसार मेरा चला जाए कोई बात नहीं। ये इतना बड़ा निश्चय और नशा है जो भगवान हमको श्रीमत देते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर भी त्यागना पड़े कोई बात नहीं, पर आत्मा को दाग न लगे। ये इतनी बड़ी कसौटी है, निश्चय और नशे की कसौटी। तो ये श्रीमत कौन दे रहा है, भगवान हमको दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं दे रहा है। परंतु अर्जुन भूल गया क्योंकि मोह के वश था। फिर भगवान ने तीसरी युक्ति रची, गीता अगर आप पढ़ेंगे ना कैसे नंबरवार है इसमें युक्तियां। फिर तीसरी युक्ति रची, हे अर्जुन तुम विजयी हो, तुम विजयी हो, तुम विजयी हो, पहचानो अपने आप को, तुम वो विजयी हो, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुमने हर कल्प कल्प में विजय प्राप्त की है, याद करो अपने आप अपने विजय को, तुम्हारी कभी हार हो ही नहीं सकती है, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, स्वर्ग तुम्हारा स्वराज्य है, तुम्हारा अधिकार है, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। इतना नशा चढ़ाया भगवान ने, तुम विजयी हो इसीलिए तुम युद्ध करो, बस निमित्त मात्र युद्ध करो, कल्प कल्प के तुम विजयी हो, हर कल्प में तुमने विजय पाई है। फिर भगवान ने देखा ये तो स्वर्ग भी नहीं चाहता है, अब मैं चौथी युक्ति क्या रचूं? तो चौथी युक्ति क्या रची, उनको साक्षात्कार करा दिया कि देखो ये सब मरे पड़े हैं, शमशान दिखा दिया, सब मरे पड़े हैं, सब इनकी मौत तो निश्चित है, तुम नहीं मारोगे, ये तो मरे ही पड़े हैं, सिर्फ बस निमित्त मात्र, क्योंकि आपको फल तब मिलेगा जब कुछ कर्म किया, ये क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, बिना बीज डाले आपको फल कैसे मिलेगा, तो निमित्त मात्र कर्म तो करना पड़ेगा ना। अर्जुन को पहले ही भगवान ने ये तो कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हें केवल डायरेक्शन दूंगा, आपको राय देता रहूंगा, श्रीमत देता रहूंगा, करना तुमको है, युद्ध करना तुमको है, तीर कमान चलाना तुमको है, मैं नहीं चलाऊंगा। अब जब चौथी बात कही कि हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत निश्चित है, अर्जुन को और दुख हो गया, हाय मेरे कारण ये सब मर जाएंगे, मैं निमित्त बनूंगा मारने के। लेकिन भगवान ने कहा तुम नहीं निमित्त बनोगे, ये तो पहले से ही मर चुके हैं। हम देख रहे हैं दुनिया का हाल, सचमुच आज कहाँ है कल क्या हो रहा है। जापान की बहनें हमारे पास मधुबन में हैं, 8-10 बहनें मधुबन में हैं जापान की, और यहाँ उन्होंने समाचार सुना कि जापान के अंदर इतना भूकंप आया, इतनी सुनामी आई, और सारा जैसे दो शहर के शहर तबाह हो गए। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर बम गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी पर, वो पूरे के पूरे दो शहर तबाह हो गए थे। और बाबा ने उस समय कहा था, बच्चे ये तो रिहर्सल है, ये तो रिहर्सल है, अभी फाइनल तो आने वाला है। तो अभी जापान के ऊपर दूसरी ग्रहचारी आई और दो शहर जापान के जो सागर के किनारे पर थे वो पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं, खत्म। वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े, जहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है, होता है, वो भी नष्ट हो गए, और वहां से रेडियो एक्टिविटी फैल रही है, पूरे परमाणु यंत्र जो लगे हुए हैं वहां से पूरा वो ये जो रेडियो एक्टिविटी की किरणें फैल रही है, इतना वहां चिंता लगी हुई है, क्योंकि ये धर्मी जो किरणें हैं अगर ये खाने में जाएगी, पानी में जाएगी, फलों में जाएगी, हवा में जाएगी, मानो जो उसका श्वास लेंगे, जो खाएंगे, सब मरेंगे। इतनी चिंता लग गई है, भारत वालों को चिंता लग गई है कि हम अमेरिका के सहयोग से और ये यंत्र बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं बिजली के उत्पादन के लिए, अचानक भूकंप हुआ, अचानक कुछ हुआ, सुनामी हुआ, और ये सब फैल जाएंगे तो क्या होगा। तो जापान की बहनें वहां मधुबन में हैं, टोक्यो तो फिर भी थोड़ा सेफ है, टोक्यो को जो मुख्य शहर है वो वहां से सेंटर से सप्लाई कर रहे कई सेवा केंद्रों पर बहनों को, अपने बीकेस को, लेकिन जहां पर ये सुनामी आया, ये दो शहर तबाह हो गए, वहां अपना कोई सेंटर नहीं है, इसीलिए अपने बाबा के बच्चे सब सेफ है जापान में, बहुत सेंटर्स है, बाबा के सेंटर्स टोक्यो में है, कोबे में है, ओसाका में है, हिरोशिमा में है, कई 5-6 शहरों में सेंटर्स हैं, जो थोड़ा साउथ और ईस्ट और मिडिल में है, नॉर्थ में कोई सेंटर नहीं, क्योंकि वहां इतनी आबादी नहीं है, क्योंकि परमाणु यंत्र है सारे नॉर्थ जापान में, तो वो सारे अभी रिसाव हो रहा है सारा, बहुत सारी दुनिया को चिंता है कि रशिया में एक हुआ था चेर्नोबिल, उसमें रिसाव हुआ था, जो अभी तक वो रेडियो एक्टिविटी जो फैली उसका असर है, बच्चे जो गर्भ में है वो गर्भ में ही मर जाते हैं, ऐसे बहुत कुछ, बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो तो हम देख ही रहे हैं। तांडव नृत्य विनाश का कभी भी हो सकता है, इतनी अभी सर्दी हुई, इतनी सर्दी हुई, इतनी बर्फ पड़ी, अभी तक लंदन में बर्फ पड़ रही है, अभी तक अमेरिका में कुछ स्थानों पर बर्फ पड़ रही है, आप सोचो अभी तक कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। लंदन के भाई बहन यहाँ मधुबन में है, कहते हमने तो इस बार की ठंडी कभी पहले नहीं देखी, इतनी ठंडी, और यहाँ धूप सेक रहे हैं, सारा दिन धूप ही सेकते रहते हैं, लंदन में धूप ही नहीं मिलती है, इतनी ठंडी है। अब मानो इतनी ठंडी हुई, अब उसके बाद फिर इतनी गर्मी पड़ेगी, मान लो जो बताया कि सूरज जो है वो आग उगलेगा। अब इतनी जो बर्फ पड़ी और सूरज उसके बाद आग उगलेगा तो क्या हालत होगी, क्या हालत होगी? सारी बर्फ पिघलेगी, और ये जो बर्फ पिघलेगी उससे सागर के जो उसका जो स्तर है वो ऊपर आएगा। तो ये तो अभी निशा, ये तो केवल शुरुआत है। बाबा ने यहाँ तक कहा है, उस दिन मुरली में कहा था, बच्चे प्रकृति को गुस्सा है ना, मुरली पढ़ी आप लोगों ने, एक मुरली अभी नजदीक की इसी सीजन की, प्रकृति को गुस्सा है। बाबा ने यहाँ तक की कहा कि प्रकृति बाबा के पास आ रही है कि हम अपना काम कब शुरू करें। मानो अगर ये तांडव नृत्य चालू होगा, आप सोचो कौन बचेगा। अभी तो फिर भी SOS हाँ बुलाते हैं, चलो एम्बुलेंस आ गई, चलो ये मिला। आखिर बाबा कहते दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा, कौन किसका दीवा जलाएगा। कहाँ हॉस्पिटल होंगे जो हॉस्पिटल में कोई इलाज भी हो सकेगा। डॉक्टर भी जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे, तो मरीज तो जाएंगे ही। तो ये भी स्थिति आने वाली है। तो ये जैसे गीता में आता है कि भगवान ने कहा अर्जुन ये सब मरे पड़े देखो, ये सब मरे पड़े हैं, इतना बार बार कभी बुद्धि में आता है तभी ये नष्टो मोहा बन सकेंगे। ये सब मरे पड़े हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते दो तीन बिंदी लगाओ, चलो एक बिंदी है जीरो लगाओ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ तो क्या होगा, पदार्थ जो हैं वो जिनमें मोह होता है वो पदार्थों का मोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पदार्थ न मेरे साथ आए न मेरे साथ चलेंगे। आत्मा अकेली आई है, अकेली जाना है। जो चीजें मेरे पास है पहले किसी और के पास थी, मेरे बाद किसी और के पास रहेंगी, न मेरे पास थी न रहेंगी। हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाना है। शरीर भी अपना नहीं है, वो भी प्रकृति को वापस करना है। आत्मा उड़ेगी अपने वतन। तो मैं पहली बिंदी लगाओ तो पदार्थों को भूलोगे। जो बाबा कहते साधनों के पीछे मत जाओ, साधना को महत्व दो। सचमुच हम देख रहे थे वहाँ जापान में लोगों को टीवी रेडियो सब जापानीज माल कितना आता है, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स ये उनके जो मोबाइल्स, अब जहाँ दबाए बीच मोबाइल ही ना चले, कुछ चले ही नहीं, टेलीफोन क्या, मोबाइल क्या, बिजली क्या, कुछ नहीं। अभी पानी नहीं वहाँ, पानी पीने के लिए नहीं, अभी बीमारियां चालू हो गई है वहाँ। जापान जैसा A1 देश, मानो वहाँ ये हो सकता है तो इंडिया में क्या नहीं हो सकता, आप सोचो। तो देखिए वो स्थिति आनी है। इसीलिए बाबा कहते ये पदार्थों का मोह छोड़ो। आजकल तो हम देखते हैं मोबाइल जैसे उनका दूसरा एक खिलौना हो गया है। खाना मिले न मिले मोबाइल चाहिए, खाना मिले न मिले टीवी चाहिए, और एक दिन ये सब धोखा देंगे, सब धोखा देंगे, देखना। वो सैटेलाइट जिसके आधार से ये सब हो रहा है वही नष्ट हो जाएगा, तो बाकी क्या ये साथ देंगे, कुछ भी साथ नहीं देगा। इसलिए सत्युग में ये सब कुछ होगा ही नहीं। कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वाइसलेस बनो तो ये वाइसलेस काम आएगा, ये वायरलेस भी काम नहीं आने वाला है। इसलिए पदार्थों का साधनों का भी मोह छोड़ो। आजकल तो हमने देखा व्यक्ति का मोह छोड़ना सहज है, पर पदार्थों का मोह छोड़ना मुश्किल है। और वो बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। तो इसीलिए पहला जीरो तो ये लगाओ, भगवान जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, और जो कुछ है सफल करो, सफल करो, सफल करो, सफलता पाओ। नहीं तो याद आएगा, याद आएगा, मेरा पैसा उस बैंक में है, मेरा फलाने को दिया हुआ है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। अगर मैं जिंदा होता सफल करता, अभी तो गया। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए और किसकी आग जलाए। सफल ही उसकी हो जो करे हरि के नाम। जो शिव बाबा के नाम पर सफल करे वो सफलता को प्राप्त करे। बाबा ने परसों भी कहा, 8 आना देते हैं और बाबा को कहते बाबा मेरे लिए महल बनाना, सुदामा का मिसाल। तो कहानी किसकी है, ये हम बच्चों की तो है। बाबा बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति पदमपतियों का लेंगे ही नहीं, अंत में जो आएंगे ना कहेंगे भगवान हमारा सफल करो, भगवान कहेगा हमें चाहिए ही नहीं। तो किसका सफल करते हैं किसका सफल करते हैं? हम गरीबों का। एक पैसा देते हैं महल लेते हैं, सुदामा तो हम ही है ना। तो ये पदमपति हमारे पास आएंगे ही कहां, अंत में आएंगे, राजाएं महाराजाएं आएंगे। बाबा कहते अंत में दो प्रकार के लोग आए, समझो अभी अंत नजदीक है। एक तो ये महाराजा महारानी आएंगे जो नाम के हैं, चाहे पदमपति हैं, वो आएंगे, उनकी आंखें खुलेगी। और दूसरा ये साधु संन्यासी महात्मा, ये भी आएंगे, कहां जाएंगे। यहाँ तक कि बाबा कहते धर्म पिताओं की आत्माएं भी आएंगी, क्योंकि बाबा से उनको अंजलि लेनी है अगले कल्प में धर्म की स्थापना करने के लिए। अभी भी वो तमो प्रधान स्थिति में आ गए हैं। इसीलिए मानो कि पदार्थों का मोह भी छोड़ना है, व्यक्तियों का मोह भी छोड़ना है, इसलिए दूसरा जीरो लगाओ, बाबा से सर्व संबंध जोड़ो। तो मैं के बजाय और मेरा मेरा, वो मेरा भी छोड़ो। अगर मेरा मेरा कहने की इच्छा भी है तो मेरा शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये सबको पक्का है ना। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बस यही सदा गीत गाते रहो। तो देखो बाबा करण करावन हार कैसे भी किसके द्वारा भी कराए लेगा, अपने पराए हो जाएंगे और पराए अपने हो जाएंगे। ये सब वंडरफुल खेल हम देख रहे हैं। तो इसीलिए बाबा से सर्व संबंध है, लेकिन बाबा से सर्व संबंध का अर्थ ये नहीं समझो बस मैं हाथ पर हाथ धर के बैठूं, बाबा कराएगा बाबा कराएगा बाबा कराएगा, ये भी फिर अंधश्रद्धा हो जाएगी। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, करना तुमको ही है, युद्ध तुमको ही करनी है, भगवान तीर कमान नहीं चलाएगा, कर्म तो मेरा होना ही है ना। वो कहानी सुनाते ना, एक व्यक्ति भगवान के भरोसे बैठा था। अब भगवान के भरोसे बैठा, अनाउंसमेंट हुई कि अभी ये यहाँ बाढ़ आनी है, खाली करो खाली करो खाली करो। अब वो एक व्यक्ति कहता है भगवान भरोसे, भगवान को मुझे कराना होगा, भगवान बचाएगा भगवान बचाएगा भगवान बचाएगा। तो बैठ गया, कुछ किया ही नहीं। तो देखा कि पड़ोसी आया बोलने, चलो 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 निकलो यहाँ से, यहाँ पानी आने वाला है, पानी आएगा सब डूब जाएगा, चलो चलो। नहीं बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, हाँ बाबा मदद करेगा। चला गया, नहीं गया वो। फिर देखा पानी तो आ गया, पानी आ गया तो वो छत पर चला गया, क्योंकि पानी घर में घुस गया। छत पर चला गया तो एक बोट वाला आया, बोट लेकर के, चलो मैं आपको बिठाता हूँ, पानी से दूर जाएंगे, बोट लेकर आया बचाने के लिए। कहता नहीं भगवान बचाएगा भगवान बचाएगा, नहीं गया नहीं गया। वो पानी छत तक आ गया, खड़ा हो गया, पानी यहाँ तक आ गया। फिर हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया और रस्सी फेंकी, चलो पकड़ो इसको, तुमको ऊपर बचाएंगे नहीं भगवान बचाएगा भगवान बचाएगा। अब पहुंच गया भगवान के पास, ऐसे कहेंगे भगवान के पास पहुंच गया तो भगवान को शिकायत करता, हे भगवान हम तो तुम्हारे भरोसे बैठे थे, तुमने बचाया क्यों नहीं? कहते कैसे नहीं बचाया, आपको तीन दूत भेजे, तीन दूत भेजे, मैंने ही तो भेजे, और किसने भेजे? हाँ भगवान बचाएगा बचाएगा ये कहकर बैठना थोड़ी होता है। वो तीन दूत भेजे, एक पड़ोसी भेजा, फिर वो बोट वाला भेजा, फिर तीसरा वो हेलीकॉप्टर वाला भेजा। ये मैंने ही तो तुम्हारे पास भेजे थे, उनको टच किया कि जाओ मेरा भगत बैठा है मुझे याद कर रहा है, और तुमने समझा ही नहीं। अब समझा ही नहीं तो हो गया पूरा काम तमाम, और क्या होगा। लेकिन यानी कहने का भाव है कि कैसे बाबा की मदद जरूर है, लेकिन अपनी हिम्मत भी तो है ना, अपनी हिम्मत के बिना मदद कहाँ से मिलेगी बाबा की भी। लेकिन सब संबंध मेरे बाबा से है, ये निश्चय और नशा बहुत जरूरी है, और हर वक्त उसकी याद हो, हर वक्त जो बाबा कहते हैं देश है देह के सब धर्मों को भूलो, मेरी शरण में आओ, तो मेरी शरण में आओ माना मुझे पहचानो, मुझे याद करो, तुमको ये कहने वाला कौन। तो अंत में कोई अगर देहधारी याद आया तो फिर वो अधिकार नहीं मिलेगा। तो कई बार वस्तु याद आती है, कई बार व्यक्ति याद आते हैं, कई बार घटनाएं याद आती है। एक माता थी, अंतिम घड़ी है उसकी, बस मरना सन है और रो रही है, रो रही है, रो रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, रो रही है। फिर रो क्यों रही हो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। लेकिन रो इसीलिए रही थी क्योंकि सारे जीवन की बातें उसके सामने आ गई और कितना दुख उसको मिला, बच्चों से दुख मिला, पति से दुख मिला, सास से दुख मिला, पड़ोसी से दुख मिला, ये दुख मिला, दुख मिला, दुख मिला। वो दुखों को याद कर रही है, ये दुख मिला। अरे भाई पूरा हुआ ना, वो तो पूरा हो गया, अभी क्यों याद कर, अभी तो भगवान को याद करो ना। लेकिन भगवान को याद करने की फुर्सत ही कहाँ, वो बीती बातें याद आ रही है। इसीलिए बाबा हमको क्या श्रीमत देते हैं, तीसरी बिंदी कौन सी हा? ड्रामा। तो जब ड्रामा की बिंदी हम लगाते हैं तो न हमें प्रश्न उठते हैं, न आश्चर्य होता है, न हमें दुख होता है, न कोई चिंता होती है, न डर होता है। दे छोड़ने का भी डर नहीं, तैयार है बाबा, हम बैठे हैं। हाँ, आत्मा बाबा के साथ ही है, कहाँ है, बाबा से दूर तो है नहीं। तो इसीलिए एक सेकंड में आत्मा पंछी है ना, आत्मा पंछी, तो पंछी को तो किसी की परवाह ही नहीं है, उड़ जाएगी, उड़ जाएगा पंछी। एक कहावत है कि पंछी डाल पर बैठा है और डाली बहुत हिल रही है, लेकिन कौन से पंछी को डर लगेगा डाली के हिलने से? उस पंछी को डर लगेगा जिसके पंख कमजोर है। अगर अपने पंखों पर उसको विश्वास है तो उसको डाली के हिलने का डर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मैं उड़ सकता हूँ। जैसे कबूतर का मिसाल देते हैं कि कबूतर बड़ा डरपोक होता है, वो हूं करता रहता है पर डरपोक होता है। बिल्ली आ गई तो आंखें बंद कर देगा, बिल्ली आ गई, अरे डरते क्यों हो, तुम तो उड़ जाओ ना, बिल्ली थोड़ी उड़ सकती है तो उड़, बिल्ली तो उड़ नहीं सकेगी, तुम्हारे पास तो पंख है। लेकिन उस समय बिल्ली को देख करके वो कबूतर भूल जाता है कि मुझे पंख भी है, वो उड़ सकता हूँ ये भूल जाता है और डर के मारे आंखें बंद कर देता है, उस समस्या को नहीं देखना चाहता है और आंखें बंद कर दी। समस्या तो है, परंतु बाप की बजाय बाप को याद किया, आत्मा उड़ गई वतन में, इसमें क्या है, एक सेकंड में उड़ गई। और किसी को याद ही नहीं करते। मुझे याद आता है, मैं कई बार अपना अनुभव सुनाती हूँ कि हमारे, हम कुछ साल पहले की बात, एक्सीडेंट हुआ, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था। हम लोग पांच जने गाड़ी में थे। अब वो एक्सीडेंट का ज्यादा वर्णन तो नहीं करूंगी, बाबा ने बचाया तो आज मैं आपके सामने हूँ। लेकिन वो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कोई व्यक्ति था सामने, उसको बचाने के लिए गिरा, उसको वो ठोकर तो लगी और फिर ड्राइवर ने उसको वो घुमाने की कोशिश की, एक्सल टूट गई, ब्रेक फेल हो गई, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। और सामने से पिलर था, वो पिलर को लग सकती थी गाड़ी, या खाई थी, खाई में गिर सकती थी, दोनों दोनों ऑप्शंस थे, पिलर को लगती तो भी खत्म, खाई में गिरती तो भी खत्म। उस समय मुझे संकल्प आया, बाबा मैं आ रही हूँ, ऐसा संकल्प किया, बाबा मैं आ रही हूँ। और कोई याद नहीं, ये हमने अपनी परीक्षा भी ली। सचमुच उस समय दिल का धड़कना भी बंद हो गया, वो दो घड़ी के लिए अनुभव हुआ, एकदम अशरीरी बन गई, बिल्कुल लाइट हो गई, और एकदम जैसे लाइट हो गई, और फिर आंख खोलू तो देखो अभी तक तो जिंदा हूँ और क्या हुआ कि वो जो गाड़ी थी, कैसे बाबा ने बचाया हम सबको, न वो पिलर को जाके लगी और न ही कोई खाई में गिरी, वहाँ झाड़ियाँ थी, कहाँ से आ गई वो थोगी, वो झाड़ियों में जाकर के लेट गई, बस बच गए, सबके सब बच गए, कुछ भी नहीं हुआ। मानो बिल्कुल जैसे बाबा ने अपनी गोद में ले लिया हम सबको, इतना उस समय बाबा की याद के गीत बज रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, तो बाबा की याद में ही थे हम सभी, जो भी बाबा के बच्चे ही थे उस गाड़ी में। तो देखो अब उस समय पर वो अनुभव मुझे कभी भूलता नहीं कि एक सेकंड में बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आया। तो इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, उस समय जैसे ये तीन बिंदु लगाई, और आत्मा तो है ही पंछी, आत्मा को क्या कहते हैं, पंछी और परदेसी, कहते पंछी और परदेसी किसी के मीत नहीं होते, परदेसी से कभी प्रीत नहीं रखना क्योंकि एक दिन उसको जाना पड़ेगा, परदेसी है ना, वीजा खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, रहेगा कैसे आपके देश में। और तो पंछी से भी प्रीत नहीं रखना, अगर पंछी से प्रीत रखी और उसको पिंजरे में रखा, प्रीत रखी तो पिंजरे में रखेंगे, ऐसे तो नहीं रखेंगे। और एक दिन अगर भूल से पिंजरा खुला रह गया तो उड़ जाएगा, वो क्यों आपके पिंजरे में कैद रहेगा, उसको तो पंख है, उसका घर तो आकाश है न कि पिंजरा। इसीलिए आत्मा भी क्या है, पंछी और परदेसी। आत्मा का सबसे पहला गुण है स्वतंत्रता, इसलिए परतंत्रता किसी को पसंद नहीं है, पर स्वतंत्रता के नाम पर आज स्वच्छंदता हो रही है। हाँ मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ, जो चाहूँ सो करूँ, पर जो चाहूँ सो करूँ उसके कारण इंद्रियों के वश होता जा रहा है, इंद्रियों के वश। और ये इंद्रियों के वश जो हो रहे हैं वही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को साधनों से भी ऊपर ले जा रहे हैं, साधना में रहो, सब संबंध मेरे साथ जोड़ो, जो है सफल करो, श्वास संकल्प शक्ति समय सफल करो, सफल करो, सफल करो, एक घड़ी भी आपकी असफल न हो, व्यर्थ न हो, एक सेकंड। बाबा की उस दिन मुरली में था शायद स्लोगन था, एक सेकंड संगम युग का कितने समय के बराबर है, एक साल के बराबर है। कहां एक साल और कहां एक सेकंड, तो कितना महत्व है इस एक सेकंड का भी संगम युग का। अब ये सब सदगति के लिए श्रीमत है भगवान की हम बच्चों को, तो ऐसी श्रीमत का हम कितने हद तक पालन करते हैं। तो गीता में तो दिखाया अर्जुन को, जब ये दिखाया ये सब मरे पड़े हैं तो उसको और ही शोक हो गया, ये सब मरे पड़े हैं, ये मेरे कारण मरेंगे। अरे भाई तुम्हारे कारण नहीं है, इनकी मौत निश्चित है, ये निश्चित है और तुम्हारी विजय निश्चित है, ये समझो। तो भी उसको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि मोह के वश था। फिर जब पांचवी बार पांचवी युक्ति जब भगवान ने देखा ये अर्जुन नहीं समझ रहा है, तो फिर लास्ट युक्ति क्या अपनाई, ब्रह्मास्त्र अपनाया, भगवान ने अपना साक्षात्कार कराया। वो तो विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं लेकिन ज्योति का साक्षात्कार भी कराया। इसलिए गीता कल का कल की मुरली थी ना, जो हजारों सूर्यों से तेजोमय स्वरो भगवान बस करो बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता, ये गीता के शास्त्र में है। अब भगवान तो इतना सलोना स्वरूप है, वो मोहिनी स्वरूप है, प्यारा स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसका साक्षात्कार अगर होगा तो बस करो कहेंगे क्या, फिर साक्षात्कार करने की इच्छा क्यों होती है, शिव बाबा का साक्षात्कार, ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार। बाकी हाँ ये विनाश का साक्षात्कार जरूर अर्जुन को हुआ, जो दिखाते हैं और कैसे मच्छरों सदृश सब उड़ रहे हैं वतन की ओर, ये अंत का साक्षात्कार। तो बाबा कहते हैं अगर ये सब नहीं माना, नहीं समझा, नहीं पहचाना कि ये कौन कह रहा है, ये भगवान कह रहा है, तो अंत में साक्षात्कार होंगे, अपने पद का भी साक्षात्कार होगा, धर्मराज का भी साक्षात्कार होगा, सजाओं का भी साक्षात्कार होगा, ये सब अंत के समय होंगे। और बाबा कहते अपने आप से पूछो मुझे कैसे जाना है, साथी बन के जाना है या बराती बन के जाना है, कैसे जाना है, हाँ साथी बन के जाना है ना, तो अगर साथी बन के जाना है तो साथ निभाना पड़ेगा, साथी बन के जाना है तो साथी के समान बनना पड़ेगा, साथी बन के जाना है तो जो साथी कह रहा है उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। तो ये सब बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं, इसलिए बाबा नयों को तो खास कहते हैं, बच्चे लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो, अभी भी मार्जिन है, अभी भी पुरानों से बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, जो बहुत पुराने उनसे आगे जा सकते हो। हाँ, पुरानों को बाबा बहुत सुंदर वरदान देते हैं। कौन सा पुरानों को वरदान देते हैं? ओल्ड इज गोल्ड, जो पुरानी है ना वो सोने के समान है। क्यों? क्योंकि बहुत सहन किया, सोना सच्चा सोना निकालने के लिए बहुत आग में डालना पड़ता है, कितना गलाना पड़ता है तब जाके सच्चा सोना निकलता है, क्योंकि खाद पड़ी हुई होती है ना, तो सच्चा सोना बनने के लिए आग में पकना पड़ता है। तो जो बहुत पुरानी है पता नहीं कितनी आग में पके होंगे, कितनी बातें उनके सामने आई होगी, लेकिन निश्चय निश्चिंत और उस नशे से आगे बढ़ते रहे, विघ्नों को पार करते रहे। तो ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड, क्योंकि मोल्ड होते गए होते गए होते गए और अंत तक बाबा के बने रहे इतने सालों तक भी, ये बहुत बड़ी परीक्षा से पार हुए। लेकिन जो नए आए हैं उनको फिर बाबा दूसरा टाइटल दूसरा वरदान देते हैं। कौन सा वरदान देते हैं? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। इसमें कौन है जो पहली बार बाबा से मिलेंगे? हाथ उठाओ, देखो कितने हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने वाले जरूर बाबा आपसे पूछेंगे, अभी भी कल पूछेंगे आपसे। तो फिर भी मार्जिन है, आप पुरानों से आगे जा सकते हो। हाँ, क्योंकि जैसे कई बार परीक्षा में भी होता है ना, कोई स्टूडेंट है वो स्कूल अटेंड पूरा नहीं कर सका, थोड़ी है उनकी अटेंडेंस, बीमार था, माँ मर गई, बाप मर गया, कोई बात थी, कुछ बात थी, तो कारण बताएगा तो उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं ना, ग्रेस मार्क्स, भाई ये बिचारे का ये कारण था तो नहीं कर सका, तो पूरी अटेंडेंस नहीं दे सका। तो भले लेट आए हो लेकिन लेट आने के बाद भी आप लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट जा सकते हो और पहली सीट भी ले सकते हो। ये तो यहाँ तक बाबा ने कहा, क्योंकि अभी तक कोई भी सीट भरी हुई नहीं है, सब खाली है। आप सोचो, खाली एक लक्ष्मी नारायण की सीट भर गई है बस, उनको बाबा और मम्मा उनकी सीट फिक्स्ड है, बाकी किसी की भी सीट फिक्स नहीं है। वो म्यूजिकल चेयर सीट है ना, खेल होता है ना म्यूजिकल चेयर, तो उसमें गीत बजता रहता है और सब सीटें खाली है। अभी किसी को जब तक म्यूजिक बंद न हो तब तक सीट पर बैठे कौन? बैठ ही नहीं सकते, सीट तो खाली होगी ना। तो अभी तक तो म्यूजिक चल ही रहा है, ये मैराथन रेस चली रही है, अभी तक पूरी तो हुई नहीं है। तो अंत में तो जब बड़ी रेस होती है ना, तो बड़ी रेस में कोई आधे में थक जाते हैं तो वहीं बैठ जाते हैं, कोई कुछ को कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ होता है, बैठ जाते हैं। लेकिन जो अंत तक हिम्मत रखते हैं वही पास होते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में एक कहानी सुनाते हैं, कहानी सुना करके मैं पूरी करती हूँ। तो कहानी में क्या बताते हैं कि कई मेंढक थे, तो मेंढकों की रेस लगी। अब मेंढकों को पहाड़ पर चढ़ना था, रेस लगी, तो रेस जो लगी ना तो मेंढक चढ़ते गए, लेकिन लोग चिल्लाते रहे, तुम नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। अब जैसे सुनते गए गिरते गए गिरते गए, तुम नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, आखिर गिरते गए गिरते गए एक बच गया, वो पहुंच गया, वो गिरा ही नहीं। तो मालूम तो पता चला ये कैसे पहुंच गया, तो पता चला कि वो तो बहरा था। वो बहरा था, उसने किसी का सुना ही नहीं, अगर सुनता तो शायद वो भी गिर जाता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, डू नो ईविल एंड थिंक नो ईविल। क्योंकि सुनेंगे देखेंगे बोलेंगे तो फिर सोचेंगे और करेंगे भी, तो ये सब नहीं होगा तो सोचेंगे भी नहीं। भगवान जो हमें कह रहा है आत्मा की सदगति के लिए, जो भगवान श्रीमत दे रहा है मुझे उसका पालन करना है, तो क्या होगा? हा? आत्मा की गति सदगति हो ही जाएगी, हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। ओम शांति।